परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी हैं, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और अपने परिवार और मित्रों के साथ आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के द्वारा से हम सीख रहे हैं कि अंत के समय में परमेश्वर अपने लोगों के बीच में किस प्रकार से कार्य करेगा। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 13 उसके 2-9 पद तक का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन फिर से एक बार रेडियो के माध्यम से एक साथ कर सकते हैं। यद्यपि हम अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपके वचन को सुन सकते हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक जीवन आज के दिन आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। इस घड़ी हमारी प्रार्थना है उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, परेशान हैं और चिंता और तनाव में हैं। प्रभु जी, आप उनके भी सुधि लें, उनकी सहायता करें, ताकि आज का वचन उनके लिए होने पाए, वे अपने जीवन में शारीरिक और आत्मिक चंगाई और छुटकारा को प्राप्त करें और आपके नाम को महिमा देने पाए। आज के वचन पर अपनी आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम इन दिनों जकरिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पुस्तक के द्वारा हम बहुत ही अद्भुत बातों को सीख रहे हैं। हमारा अच्छा चरवाहा जब पहली बार इस पृथ्वी पर आया था, अर्थात यीशु, तब उसे अस्वीकार किया गया था, वरन उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए अन्य जातियों के हाथों में सौंप दिया गया था। विश्व के इतिहास में अब तक अनेक महानुभावों ने शांति लाने का प्रयास किया है, जबकि सच तो यह है कि शांति लाने वाला केवल और केवल प्रभु यीशु ही है। जब वह दूसरी बार इस पृथ्वी पर आएगा और अपने राज्य की स्थापना करेगा, जकरिया की भविष्यवाणी में एक अंतराल आता है जब वह कुछ नहीं कहता है। यह कलीसिया का युग है। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए जकरिया की पुस्तक 13 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ें। जकरिया की पुस्तक 13 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेंगे, और मैं भविष्य वक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा। ध्यान दीजिए, यहां पर हम देखते हैं कि उस समय, देखिए वह फिर से कहता है उस समय, मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा। बेबीलोन की बंधुआई के समय उन्होंने पहले जैसी मूर्ति पूजा त्याग दी थी। दान और बेतेल में सोने के बछड़े फिर नहीं रखे गए थे, परंतु वे गृह देवता रखते थे और अंधविश्वास की बातों को मानते थे। वे राशियों में भी विश्वास करते थे, और यही कारण है कि वह उनसे कहता है, मैं भविष्यद् वक्ता और अशुद्ध आत्मा को इस देश से निकाल दूंगा। ये भविष्यद् वक्ता झूठे थे और अशुद्ध आत्माएं दुष्ट आत्माएं थी। आज दुष्ट आत्माओं का प्रभाव बहुत है और मनुष्य उन पर ध्यान भी दे रहा है। अंत समय के निकट आते आते हम दुष्ट आत्माओं के कामों को अधिक देख रहे हैं। स्पष्ट कहूं तो उनका चतुराई भरा प्रकाशन सर्वत्र दिखाई देता है। इस गद्यांश के महत्व का कारण है कि केवल यही लिखा है कि प्रभु राज में दुष्ट आत्माओं को पृथ्वी पर से निकाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में झूठे भविष्यद् वक्ता और ख्रिस्त विरोधी अर्थात मसीही विरोधी के पृथ्वी पर से निकाले जाने का उल्लेख किया गया है, जिसे हम 19 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, वह पशु और उसके साथ का झूठा भविष्यद् वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। प्रभु राज में शैतान बांधा जाएगा, और इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय उसके 1-3 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अताह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अताह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। अतः हम जानते हैं कि शैतान प्रभु राज में बांधा जाएगा और झूठा भविष्यद् वक्ता और ख्रिस्त विरोधी आग की झील में डाले जाएंगे तथा शैतान अतः कुंड में बंद किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दुष्ट आत्माओं के भविष्य के विषय कुछ भी नहीं लिखा है, परंतु यह मानना तर्क रहित नहीं होगा कि इसी समय वे भी कहीं न कहीं बंद किए जाएंगे, और यह तो निश्चित है कि वे पृथ्वी पर नहीं होंगी। मेरे प्रियो, अब आप सोच रहे होंगे कि एक बार अन्य धर्मों ने आने वाले फिर को लौट कर नहीं जाएंगे, परंतु आज मनुष्य अंधकार में लौट रहा है, जिसका कारण है कि वह परमेश्वर के वचन के ज्ञान से रहित है। आज दुष्ट आत्माओं के सामर्थ्य कार्यों की व्याख्या भी यही है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ना होना तंत्र मंत्र को गतिशीलता प्रदान करता है। वहां ऊर्जा की कोई भी कमी नहीं है। वह कैसा महान युग होगा जब पृथ्वी पर से दुष्ट आत्माएं निकाल दी जाएंगी। जकरिया आगे कहता है 13 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे, तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको वेध डालेंगे। मेरे मित्रों, यह भाषा कठोर तो है, परंतु वह समय आएगा जब परमेश्वर की संतान उसे पहला स्थान देंगी। उसके प्रथम आगमन पर तो उसके साथ विश्वासघात किया गया था और आज भी उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है, परंतु भविष्य में वे उसके विश्वासी होंगे, चाहे उनका झूठा भविष्यद्वक्ता उनका निज पुत्र ही क्यों ना हो। हम जकर्या के पुस्तक 13 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, उस समय हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यद्वाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे। मेरे प्रियो, यहां पर दो बातें मेरी जिज्ञासा का कारण है। पहली बात, जब प्रभु यीशु आएगा तब झूठे भविष्यद्वक्ता लज्जित होंगे और अपने भ्रम के दर्शनों के कारण उनमें अपराध बोध होगा। वे शोकित होंगे कि प्रभु यीशु ने आकर उनमें से प्रत्येक को झूठा सिद्ध किया है। दूसरी बात, और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे। भविष्यद्वक्ता या तो भेड़ की खाल या बकरी की खाल या ऊंट के बाल का बुना हुआ वस्त्र पहनते थे। आपको स्मरण होगा कि जब इसहाक के पुत्र एसाव का जन्म हुआ था, तब वह ऐसा लगता था जैसे वह एक वस्त्र को पहने हुए है। भविष्यद्वक्ता एलिया भी ऐसा ही वस्त्र पहनता था जो उसके उठाए जाने के समय एलिशा पर गिरा था। यह वस्त्र परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता की पहचान थी। अतः झूठे भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की नकल करने के कारण लज्जित होंगे। जी हां, जकर्या कोई नई बात नहीं करता है। उस युग के इसराइली इन सब बातों से परिचित थे और यही कारण है कि भविष्यद्वक्ता लज्जित होंगे। जकर्या की पुस्तक 13 अध्याय उसके 5 पद में आगे लिखा हुआ है, परंतु वह कहेगा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं किसान हूं, क्योंकि लड़कपन ही से मैं दूसरों का दास हूं। झूठे भविष्यद्वक्ता पुनः खेती बारी करने लगेंगे। मेरे मित्रों, अगले दो पद विस्मयकारी हैं। कुछ आलोचकों ने तो उन्हें जकर्याह की पुस्तक से अलग करना चाहा है, क्योंकि उनके विचार में उस समय ऐसी भविष्यद्वाणी एक आश्चर्य की बात थी। वह है भी आश्चर्य की बात है, यही तो इसका अचंभा है। इसे अस्वीकार करने का कोई भी बहाना नहीं है। यह तो हमारी चेतावनी के लिए है। जी हां, यह पद किसे संबोधित कर रहा है इसे जानना जरूरी है। इसमें मतभेद है और मेरे विचार में यह मसीह के विषय में है। जकर्याह की पुस्तक 13 अध्याय के 6 पद में आगे लिखा हुआ है, तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। ध्यान दीजिए, वह कहता है, मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। परंतु जब वह पहली बार आया तब वे उससे प्रेम नहीं करते थे। सच तो यह है कि वे उससे घृणा करते थे। धर्मशास्त्र में लिखा है कि वे आकरण ही उससे घृणा करते थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है कि वह अपनों में अर्थात अपनों के बीच में आया और अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर के पुत्र अर्थात संतान होने का अधिकार दिया। जब उन पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा तब ये बचे हुए इसराइली प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे और उससे पूछेंगे कि उसकी छाती में ये घाव कैसे हुए। तब वह उन्हें बताएगा कि जब वह पहली बार अपनों के बीच में आया था तब वह घायल किया गया था। वह अपनों में अर्थात यहूदियों, सामरी स्त्री ने उसे यहूदा कहा था, अपनों के बीच में आया, उस समय उसे ग्रहण करने वालों की संख्या बहुत ही कम थी, और जब वह पुनः आएगा तब भी बहुत ही कम यहूदी शेष रहेंगे और वे उसे पहचान लेंगे। मेरे विचार में वे बचे हुए यहूदी संख्या में बहुत अधिक होंगे। लिखा है, तब उससे यह पूछा जाएगा, उनका वक्ता पूछेगा, जैसे पत्रस ने शिष्यों की ओर से प्रभु यीशु को उत्तर दिया था, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिसे हम मत्ती 16 अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं। कुछ लोग एक गीत गाते हैं जिसमें प्रभु यीशु को गलील का अजनबी कहा गया है, परंतु वह उनके लिए अजनबी नहीं है जो उसे जानते हैं। जी हाँ, अपने प्रथम आगमन के समय वह गलील में अजनबी था, परंतु पुनः आगमन के समय वह गलील में अजनबी नहीं होगा। आज विश्वासियों के लिए वह अजनबी नहीं है, उसे जानना अनंत जीवन है। पौलुस प्रेरित ने अपनी जीवन के अंतिम समय में लिखा, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मेरे मित्रों, क्या ही अद्भुत बात है। यह सच है कि उसके प्रथम आगमन पर यहूदियों ने उसे नहीं पहचाना था। अपनों को पहचानने में सक्षम ना होना अति दुखदायी होता है। एक माँ अपनी पुत्री से मिलने 17 वर्ष बाद आई थी और उसके सामने से निकल गई क्योंकि उसे पहचान ना पाई। एक माँ अपनी बच्ची से मिलने रूस से आई और उसने उसे शिशु अवस्था से ही नहीं देखा था। बच्ची को पहचानना उसके लिए संभव नहीं था। यह त्रासदी है। मेरे विचार में संसार की सबसे बड़ी त्रासदी इन 11 शब्दों में व्यक्त है। वह अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। यह कैसा परिदृश्य है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसे सविस्तार प्रकट करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 26 पद में वह कहता है, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं पहचानते। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था कि वे उसके आगमन का समय नहीं पहचानते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद में पौलुस कहता है, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। मेरे प्रियों, ध्यान दें, पर्दा उनके हृदय पर पड़ा है, परंतु जब मन सही हो तो यह पर्दा उठ जाता है। प्रभु यीशु तब तक ही अजनबी हैं जब तक कोई उसे ग्रहण ना करे। जकरिया यही कहता है कि उसके प्रथम आगमन के समय उन्होंने उसे नहीं पहचाना था। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु के पहले और दूसरे आगमन में महान अंतर है। उसके प्रथम आगमन का मुख्य शब्द है उद्धार, उसके दूसरे आगमन का मुख्य शब्द है प्रकाशन। उसके प्रथम आगमन पर मिलाप हुआ और उसके दूसरे आगमन पर वह पहचाना जाएगा। पहले आगमन पर उसका देह धारण हुआ था, परंतु दूसरे आगमन पर स्वीकारण होगा। पहला आगमन एक भेद की बात था, जो दूसरा आगमन प्रकटीकरण होगा। प्रथम आगमन पर प्रायश्चित किया गया और दूसरे पर उद्घोषणा होगी। मसीह का कैसा चित्रण यहां पर प्रकट किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे आहत चरवाहा और तीतर वितर भेड़ें। जकरिया की पुस्तक 13 अध्याय के 7 पद में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है, उसके विरुद्ध चल, तो उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तीतर बीतर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, यह उस समय की बात है जब वह घात किया गया था। प्रभु यीशु घात किया गया था। प्रभु यीशु जब पहली बार इस पृथ्वी पर आया था तब उसने स्वयं कहा था कि यह पद उसके संदर्भ में है। हम इस असाधारण पद को जकरिया के पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 पद से संदर्भित करते हैं। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। यहां पर कहता है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल। परमेश्वर कह रहा है और प्रभु यीशु के विषय में वह कह रहा है, जो पुरुष मेरा स्वजाति है। यह प्रभु यीशु के विषय पुराने नियम का एक निश्चित कथन है। आगे वह कहता है, तब भेड़ बकरियां तीतर बीतर हो जाएंगी। कौन सोच सकता था कि यह पद प्रभु यीशु मसीह के बारे में होगा? मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि यह प्रभु यीशु के संदर्भ में है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 31 पद में। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तीतर बीतर हो जाएंगी। यहां वह स्वयं के विषय में कह रहा है। यदि आपको इसराइल के लिए परमेश्वर के भावी प्रयोजन में कोई शक हो तो आप इस पद को ध्यान से पढ़ें। प्रभु यीशु के आगमन से संबंधित पहले और दूसरे आगमन की ये भविष्यवाणियां क्या प्रकट करती हैं? कि वह झूठ कह रहा है। उसके अनुसार जकरिया की भविष्यवाणी कहता है, तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तीतर बीतर हो जाएंगे, और जब वह पुनः आएगा तब वे पूछेंगे, तेरी छाती पर ये घाव कैसे हुए? तब वह उत्तर देगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। और तब अध्याय 12 में लिखा है, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। वह दिन यहूदियों के लिए प्रायश्चित का एक महान दिवस होगा, और स्पष्ट है कि यह समय भविष्य का है। मेरे प्रियो, इस अध्याय के अंतिम दो पद महाक्लेश से संबंधित हैं। आइए हम पढ़ते हैं जकरिया की पुस्तक 13 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की दो तिहाई मार डाली जाएगी और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। ये वे ही बचे हुए यहूदी हैं जो पूछेंगे, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? महाक्लेश में दो तिहाई यहूदी नष्ट हो जाएंगे। जकरिया 13 उसके 9 में आगे लिखा है, उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, क्या यह एक अद्भुत पद नहीं है? ये लोग प्रभु यीशु के विश्वासी जन हैं जो उसके लिए खड़े होंगे। ये महाक्लेश में बचे रहेंगे क्योंकि परमेश्वर उन पर मुहर लगाएगा। आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1-8 पद और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय 1-3 पद में इसे पढ़ सकते हैं। लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखा, वह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 144,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 144,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। मेरे मित्रों, ये वे लोग हैं जो सताव के समय प्रभु यीशु को ग्रहण किए और अंतिम समय तक बने रहे। लिखा है कि वे परमेश्वर के लिए गीत गा रहे थे। यह क्या ही अद्भुत बात है। परंतु मेरे श्रोता मित्रों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, वह परमेश्वर होकर के भी इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया। जो कोई उस पर विश्वास करता है उद्धार पाता है। क्या आपने उसे पहचाना? क्या आपने उसे ग्रहण किया? यहूदियों ने उसे नहीं पहचाना। आज आपके लिए अवसर है कि आप उसे पहचाने, उसे ग्रहण करें, ताकि आप उसके संतान बन जाएं। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।